Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंत में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी तथा शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर आपके लिए फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, थैंक यू।
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ में है लालिमा।
थैंक यू निखिल। यस फ्रेंड्स, द हेडलाइंस फर्स्ट। स्टॉक मार्केट्स क्लाइम फॉर थर्ड डे ऑन फर्म ग्लोबल क्यूज। सेंसेक्स राइजेज 90 points. Nifty closes above 22,350. RBI bulletin forecast extension of upward trend in real GDP growth fueled by robust investment demand and positive sentiments. And gold plunges 729 rupees to 70,468 rupees. Silver prices dive by 719 rupees in futures market.
वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में आज भी लाभ में रहे। सेंसेक्स में 90 अंकों की बढ़त और निफ्टी 22,350 से ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में कहा, निवेश की सशक्त मांग और उपभोक्ताओं के सकारात्मक रुझान से वास्तविक जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी के आसार। और सोना 729 रूपये की गिरावट से 70,468 पर पहुंचा, वहीं वायदा कारोबार में चांदी 719 रूपये नीचे आई। और सबसे पहले सेंसेक्स की खबर पर डालते हैं नजर। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच टेलीकॉम, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उपयोग की वस्तु आधारित शेयरों में लिवाली के बाद घरेलू सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में आज भी लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 90 अंक यानी कि 0.12% के उछाल के साथ 73,738 पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक यानी 0.14% की बढ़त के साथ 22,368 अंक पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 0.52% ऊपर आ गया। वहीं स्मॉल कैप सूचकांक 1.05% के लाभ के साथ बंद हुआ।
बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस एंडेड हायर फॉर द थर्ड सेशन इन अ रो टुडे फॉलोइंग गेन्स इन टेलीकॉम, टेक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स अमिड अ फर्म ट्रेंड इन द ग्लोबल मार्केट्स। द बीएसई सेंसेक्स जंप्ड 90 पॉइंट्स और 0.12% टू सेटल एट 73,738, while the Nifty 50 rose 32 points or 0.14% to close at 22,368. From the Sensex basket, Bharti Airtel, Nestle, Maruti, Tata Motors and HCL Technologies were the major gainers. On the other hand, Sun Pharma, Reliance Industries, Mahindra & Mahindra, JSW Steel and Tech Mahindra were among the laggards. In the broader market at the BSE, mid-cap sector jumped 0.52%, while small-cap sector gained by 1.05%. In sectoral indices at the BSE, telecommunication sector gained 4.27%, realty sector gained 2.40%, tech sector rose 1.23%. In contrast, energy sector slipped 0.8%, oil and gas sector fell 0.6%. So Prakash ji, how do you attribute this to the fact that we did touch 75,000 at one point of time and we were all elated, and now at 73,738, is this Sensex in a corrective mode? What are the factors that have led to this higher for the third session today and now roughly stabilizing around 72, 73. Is this, are we reaching towards some stable numbers or, as they say, the markets are always sensitive?
No, actually, the immediate reason for this optimism, today's optimism, mm-hmm. or previous two sessions, mm-hmm. sorry, was that the easing of some tensions in the Middle East. The geopolitical tensions, which were you know, which were causing a lot of concern.
Yes.
And people have realized that, you know, it has not really escalated to the extent it was feared.
Hmm.
So it came as a big relief. Not big relief, some kind of a relief. I would say some kind of a relief to the market. And this easing of tensions not only led to improvement in the market sentiment, stock market sentiment, it also led to easing of correction in the gold prices, which was touching sky
high. Yes, yes.
Because gold, as you know, is a safe haven.
Yes.
So whenever there's a crisis, whenever there's a fear, anxiety among investors, people rush to gold.
Mm-hmm.
So gold corrected,
mm-hmm.
market sentiment improved, and the relationship is directly with the somewhat easing of tension in the. Now, the other question you asked me, whether it points to a stability.
Yes.
Stability, I don't think, as long as you have this problem in the Middle East, you have this Israel-Iran thing cropping up now and then,
mm-hmm.
so one would be at risk to say whether stability is there.
Mm-hmm.
One has to be prepared for all eventualities. And the for economy like India, our main concern remains on the issue of energy prices, because we are the net importers of energy.
Yes.
So energy, any volatility in energy prices have a bearing. So this is what today's events, I would summarize like that.
Mm-hmm.
प्रकाश जी, अगर भारतीय कंपनियों की बात करें, खासतौर पर बड़ी कंपनियों की बात करें, तो अभी कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आई हैं जो ये दर्शाती हैं कि भारत का जो मार्केट है काफी अभी प्रॉफिट एक तरह से बुक कर रहा है. और बड़ी कंपनीज को लेकर के लोगों के मन में ये धारणा ये भी बनी हुई कि बड़ी कंपनीज में भी पैसा लगाएं या न लगाएं, तो क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को?
मेरा हमेशा से ये इन्वेस्टर्स को सजेशन रहता है, मार्केट सेंटिमेंट एक चीज है
जी,
और टेक्निकल एनालिसिस एक चीज है, और फंडामेंटल दूसरी चीज है. जो छोटा इन्वेस्टर है, जिन इन्वेस्टर की शायद, जो इन्वेस्टर आपके माइंड में, जो मैं से पूछना चाह रहे हैं कि जो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, एक चीज होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. उससे आपको कंपनी की वैल्यूएशन मालूम पड़ा. अच्छा सा अच्छा शेयर है, आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, बढ़िया है, लेकिन देखते हैं ना उसका प्राइस किस दाम पे मिल रही है. तो ये जरूर देखिए किस दाम पे क्या कंपनी मिल रही है, और वो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो आज का अर्निंग है और आगे पोटेंशियल अर्निंग भी है. तो ये मुश्किल नहीं है जानना. अब टॉप कंपनीज हैं, जिन कंपनियों का नाम आज ले रहे हैं, तो बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या है कि आंख मीच के नहीं ले सकते उसको. आपको देखना है, अगर इतनी महंगे भाव में मिल रही है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, या उसकी अर्निंग बढ़ने दीजिए. तो वेट एंड वॉच नहीं हमेशा करना ऐसे, बिकॉज कई बार आदमी लेफ्ट आउट हो जाता है. लेकिन ऐसे सेंटीमेंट को चेज करना, मार्केट को चेज करना, उस रेस में मत पड़ी.
एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, आज स्मॉल कैप सूचकांक 1.05% के लाभ के साथ बंद हुए, कल भी ये एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ लाभ में बंद हुए. हालांकि पहले स्थिति कुछ समय तक नहीं देखी गई, लेकिन अब ये अच्छी स्थिति के साथ में नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
क्योंकि स्मॉल कैप में पीछे करेक्शन बड़ी ज्यादा हुई थी
जी.
ऐसे शेयर हैं जो 50% पिछले 2-3 महीने में गिर गए
जी.
अब 50% गिरने के बाद 2-4% आज बढ़ा, तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है. स्मॉल कैप्स में आपको सावधान हमेशा रहना पड़ेगा, अभी भी रहना चाहिए
जी.
क्योंकि कुछ तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके यहां प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, वो सब समझते हैं, हालांकि वो भी मार खा जाते हैं कई बार. तो स्मॉल कैप को आपको ध्यान से हैंडल करना है. कई बार रिस्क ज्यादा होता है, गेन भी कई बार ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन स्मॉल कैप, क्योंकि करेक्शन बहुत ज्यादा हो सकी थी, बड़ी शार्प करेक्शन हुई थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है, पिछले प्रोग्राम में आया था, उन्हीं दौरान सेबी के चेयरपर्सन ने भी वार्निंग दी थी, जो बड़ा फ्रॉथ झाग पैदा हो गई है,
बबल एंड फ्रॉथ
पैदा हो गई. तो वो जो है ना, वो उसके चलते काफी करेक्शन हुई थी, और उस करेक्शन के बाद अब थोड़े उसमें रुझान आया है. अभी देखने वाली बात है कि कब तक ये सस्टेन करता है. जी ये हमारा अभी इसका जो
And Prakash ji, Nikhil started off by talking about what we call blue chip, on the Sensex. Talking about the mid cap and small cap, do you see the larger, the broader middle class of the country having greater confidence in mid cap and small cap now? A. And a corollary question to that, do you think that now mid cap and small cap are for short term investment, or and one usually considers the blue chips or the large cap as once you invest and it's there as an asset lifelong, but bigger the chip, bigger the risk, and bigger the time frame. How do you see this, what I just shared with you?
Well, for an investor, I always believe that don't get into this technicality of small cap, big cap, all this.
Oh, really?
Yeah. Mm-hmm. What matters is, yes, small cap generally is perceived to be companies which have huge potential for growth, who have a long journey to go.
Yes.
Mm-hmm. And the blue chip which you mentioned would generally be understood as companies which have already reached a particular level. Top companies which are already
multinational
sometimes. Indian companies
which
have a huge capital and they have influence on large people.
Yes.
So one should not really bother about. Obviously, as you stated earlier, that the blue chip companies are expensive to buy.
Mm-hmm.
Because you are buying something expensive, so you need to pay more.
Mm-hmm.
And when blue chip companies are already quoting at a particular price, so it is perceived that the potential for growth is limited,
right,
or not to a degree where this potential exists for the small caps.
Correct.
Mm-hmm. That's the perception.
Yes, yes.
But my own experience tells me that it is not always true. Okay. Generally, it is not advisable to talk about individual companies in this program.
Yes.
But I tell you, if you do a study, you will find several top blue chip companies which have given a return of 80%, 100% over the last 1 year. Blue chip top class companies in automobile, in defense.
Hmm.
So it is not always that blue chip companies remain stagnant. No, even they are giving you handsome returns. So if they are giving you handsome returns with a lot of safety intact, then one should be careful that is it worth taking a risk in certain areas. I am not mentioning even for a minute that don't look at small caps.
Mm-hmm.
There are entrepreneurs whose companies are doing well, have a good potential. Mind you, some of the small cap companies are having brilliant kind of technologies, brilliant kind of... So that is where, after all, I always say that investor must also do some research in the sense that we must know which company are we investing in, who are the promoters, what is their background, what is their educational background, what is their strength, what kind of leverage they have it on their balance sheet. So all this research, after all, it's our money. We are investing our money. We then need to protect and see it grow.
Absolutely.
प्रकाश जी, निवेशकों से जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा. हमारे भारतीय निवेशक अक्सर इन्फ्लुएंस होते हैं, जो विदेशी निवेशक हैं अगर पैसा निकाल लेते हैं तो मन में कहीं ना कहीं उनकी घबराहट आ जाती है, तो ऐसे निवेशकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए जी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अब क्या है, हमारी मार्केट में बड़ी डेप्थ हो गई
जी.
हमारी हिंदुस्तानी मार्केट में बहुत डेप्थ है. अब हम पूरा अपना दारोमदार विदेशी निवेशकों पे नहीं, हमारी मार्केट बड़ी डेप्थ है. लेकिन ये भी डिसमिस नहीं कर सकते आप उनको
जी,
कि भाई नहीं जी, उनकी परवाह मत कीजिए
जी.
देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है वो एक ग्लोबल ट्रेंड तो आपको दिखाता है ना.
बिल्कुल.
अब पिछले महीने में इस महीने में काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट पुल आउट कर रहे हैं
जी
हमारी मार्केट से. तो पुल आउट करने का कोई कारण होगा, वो कारण हमारा कोई लोकल कारण नहीं है,
ग्लोबल है,
वो ग्लोबल कारण है
जी.
तो निवेशक जो अवेयर रहता है उसको ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. अब उसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए हमारी कि भाई हम और वो, ऐसा नहीं है. मार्केट का है कि हिस्सा है, वो भी हैं आप भी हैं, दोनों वो आपको ग्लोबल इनपुट तो दे रहे हैं, उनसे सीख लेते हैं हम लोग, हमारा इनपुट वो सीख लेते हैं, हमारी की मार्केट को डेप्थ मिल रही है, तो अगर वो क्यों निकाल कर ले जा रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स ये हैं कि अगेन इजी ओवर टेंशन, जो ये उम्मीद थी कि शायद इंटरेस्ट रेट जल्दी कम अमेरिका में हो जाएंगे, अब वो थोड़ा और देर नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, तो उसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ पैसा निकाल रहे हैं, ये तो चलता रहेगा
जी।
लेकिन हमको ना तो ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत है कि उनके उनको पीछे डर जाएं, पैनिक हो जाएं, वो बेच रहे हैं हम भी बेच दें, नहीं, हमारा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं तरीके से स्मार्ट तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिसमिस भी नहीं करना चाहिए, ये मार्केट ईगो का गेम नहीं है।
एंड द फैक्ट दैट वी हैव नाउ अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन शोज इन्वेस्टर्स फेथ इन द इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट।
चलिए अब रुपए पर नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.34 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106.10 पर कारोबार कर रहा था। और अब एशियाई और यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। हांगकांग शेयर बाजार की हेंगसेंग इंडेक्स में 1.90% की बढ़त हुई। सिंगापुर स्ट्रीट टाइम इंडेक्स में 1.45% का उछाल आया। जापान का निक्केई सूचकांक 0.30% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.75% की गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.24% का नुकसान दर्ज हुआ। उधर यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार आज ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी आज अंतरदिवसीय कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सूचकांक 0.5% बढ़कर 8066.59 पर आ गया और इसने फरवरी 2023 में अपने पिछले शिखर को पार कर लिया। जर्मनी के डेक्स में 0.90% की बढ़त चल रही थी और फ्रांस के कैक में 0.5% का उछाल आया। प्रकाश जी, मैं आपसे चाइनीज मार्केट के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज यहां पर गिरावट देखी गई 0.75% की, जबकि बाकी सारे जो मार्केट खासतौर पर जो एशियन मार्केट थे वो लाभ में चल रहे थे, सारे बड़े मार्केट।
वो कोई उनका लोकल हो सकता है, और जो बाकी जो मार्केट जो चढ़े हुए हैं वो भी, जैसे मैंने जिक्र किया हमारे उसके लिए, हमारी मार्केट के लिए, वहां भी ये चीज है कि भाई थोड़ा ईजिंग ऑफ टेंशन जो है उससे थोड़ा रिलीफ है। अगर आज मार्केट का ट्रेंड देखें ओवरऑल
जी,
वो यही है कि एक जो चिंता बनी हुई थी बहुत ज्यादा, वो चिंता कुछ हद तक लिमिटेड हो गई। तो ये चाइना के लोग ओवरऑल जो ट्रेंड आपको दिख रहेगा वो यही है। अब वो चलेगा नहीं चलेगा, अगेन यू नो देखिए जी, पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो बहुत मैटर तो करती है ना।
बिल्कुल।
तो किस तरह से, क्योंकि सप्लाई चेन का इश्यू है, सप्लाई चेन जो है, और चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का, चाहे लोग चाहें या ना चाहे, चाहते हुए ना चाहते हुए, एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हब तो है
जी,
ठीक है। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है, तो उसके चलते मार्केट का सिनेरियो इस तरह से है कि एक रिलीफ रैली जिसको आप बोल सकते हैं वो है, वो रिलीफ रैली। और मार्केट काफी हद तक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अपनी मार्केट देखें तो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है। अगर थोड़ा सा करेक्शन इसमें होता है तो वो एक टेक्निकल करेक्शन माना जाएगा और कोई घबराने वाली बात नहीं, कई बार हेल्दी करेक्शन भी आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है।
आई थिंक चाइना फीड्स द वर्ल्ड, डेवलप नेशंस में भी जाएं तो सब स्टोर्स में कोई वहां का माल नहीं है, सब मेड इन चाइना, मेड इन चाइना ही है।
एज़ आई सेड, सप्लाई चेन हब है, वेदर वी लाइक इट और नॉट,
एग्जैक्टली, इट हैपेंस टू बी देयर, यू कैन सी इट ऑन द ग्राउंड।
दैट्स राइट।
व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द फैक्ट दैट लंदन्स फुटसी इज हिट अ रिकॉर्ड हाई इन टुडेज इंट्राडे ट्रेड? What's the reason?
That's also, I think, one of the reasons, as I said earlier,
softening of the global tension
and some, there is in Bank of England, there is an expectation that the Bank of England could ease the rates as well. That was additional factor we worked in favor of FTSE gaining today.
Right. All right, friends, let's take a look at the U.S. markets now. Key U.S. stocks ended higher yesterday following a sell-off in previous sessions as investors eyed a busy week for quarterly results from key companies that would provide a glimpse of the U.S. economy's health. The Nasdaq Composite gained 1.11%, the S&P 500 added 0.87%, and Dow Jones Industrial Average rose 0.67%. Moving on, the Reserve Bank of India's April bulletin has said that conditions are shaping up for an extension of a trend upshift in real GDP growth, backed by strong investment demand and upbeat business and consumer sentiments. The article titled State of the Economy says that CPI inflation settled at 4.9% in March after averaging 5.1% in the preceding 2 months. The article, however, warns that extreme weather events may pose a risk to inflation along with prolonged geopolitical tensions that could keep crude oil prices volatile. Well, we've been talking about geopolitical tensions all along. Another article titled Food and Fuel Prices, Second Round Effects on Headline Inflation in India, claims that the impact of food shock on core inflation has reduced over time, while that of fuel shock has increased recently. It adds that second round effects of food and fuel inflation on headline inflation have become subdued, especially after the adoption of flexible inflation targeting in India. The bulletin has also published an article on India's foreign exchange reserves in high volatility episodes, an empirical assessment. This article analyzes the trend in India's foreign exchange reserves during major high volatility episodes like the global financial crisis, Eurozone debt crisis, US-China trade war, and the recent Russia-Ukraine conflict and monetary policy tightening in the US. It informs that the Reserve Bank has managed to contain rupee volatility and keep forex markets largely stable in all high volatility episodes. It adds that rupee volatility has remained lowest among currencies of major emerging and advanced economies, despite unprecedented headwinds, especially during the Russia-Ukraine war. Well, Prakashi, this story has many stories within this story. Taking a cue from the last one, rupee volatility has remained lowest. Indeed, we see rupee having stabilized. Nikhil just read the story, around 83 rupees for a US dollar for quite some time. Good sign. Despite its weakening?
Well, it's a good sign that we have maintained stability in our forex market, and because it has a lot of impact on our imports and stuff like that.
Mm-hmm.
And RBI must be given credit for this,
right.
as the bulletin rightly says.
Mm-hmm.
Because what RBI does, it uses various tools, instruments. Because RBI has several tools, instruments to make sure that it is also supported by solid reserves, almost 650 USD billion forex reserves, so that gives it a lot of cushion.
Mm-hmm.
to use those tools effectively.
Mm-hmm.
To ensure that the forex market remain stable. Of course, RBI says, and it is true, that it leaves the forex rates to the market forces, but it keeps an oversight.
Yes.
And make sure that the forex market remains stable, and credit must be given to it.
प्रकाश जी, थोड़ा सा पीछे से जाकर अगर हम देखें तो कोविड आया, उसके बाद तमाम वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव आया, आज भी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स है कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं, उसके बाद भी भारत लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सही से बचा करके रखने में सफल रहा, साथ ही मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण वाली जहां तक बात है तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है।
मुद्रा इन्फ्लेशन की बात से शुरू करते
हैं। जी,
इन्फ्लेशन जो आरबीआई है वो काफी डिटर्मिनेशन दिखाया उन्होंने
जी,
वो पूरी तरह से सक्सेस बोलना, वो तो खुद आरबीआई खुद ही सेटिस्फाइड अभी नहीं है
जी,
वो चाहता है 4% ही आए
जी,
जो फ्लेक्सिबल जो टारगेटिंग है कि 4+2-2 मतलब 6 तक जा सकता है या 2, लेकिन वो 6 में 5 में भी सेटिस्फाइड नहीं है
जी.
अगर आप लेटेस्ट आरबीआई की पॉलिसी देखें तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्लियरली सेज कि वो जो हमारा जो स्टांस है पॉलिसी का वो 4% के प्रति जाना चाहिए
जी,
तो सक्सेस तो है वो आरबीआई खुद का, लेकिन एफर्ट जबरदस्त है, डिटर्मिनेशन जबरदस्त है उनकी कि इन्फ्लेशन इज आवर टॉप प्रायोरिटी
जी।
क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो जो इफेक्टिव इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कहीं परेशानी होती है, और आरबीआई इज क्वाइट अवेयर ऑफ इट, तो और सरकार के साथ मिलके, फिजिकल पॉलिसी के साथ मिलके एफर्ट लिए जा रहे हैं और आरबीआई ने तो डिटर्मिनेशन दिखाया और सिंगल माइंडेड इनके पास अप्रोच है अभी
जी
इन्फ्लेशन को लेके, विच इज गुड।
इसमें एक चीज अच्छा मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि लगातार निवेश की मांग को बढ़ाने की बात कही गई है कि निवेश की मांग हमारे देश में बढ़ रही है, कि देश में निवेश भी बढ़ेगा जिससे काफी पैसा यहां पर आ भी सकता है, आ भी रहा है, ऐसी बातें कही जाती है। साथ में ये भी कि प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद हम अपनी बढ़त को बनाए रखने में सफल रहे हैं।
भाई ये जो सर्कमस्टांसिस की जो बात कर रहे हो ग्लोबल एनवायरमेंट है, वो जैसे एक्सपोर्ट मार्केट है वो चैलेंज है ना, क्योंकि जब हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है तो हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स के लिए अब सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है मिडिल ईस्ट से, फिर रॉ मटेरियल पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है और क्या होता है सप्लाई चेन के अलावा कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे जैसे जियो पोलिटिकल सिचुएशन खराब होती है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, आपका रिस्क प्रीमियम जो शिपमेंट का है, जो फ्रेट का है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता
है, रेड सी इज अ वेरी टिपिकल,
यस, तो ये सब बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर डूइंग वेल, हमने हमारा ओवरऑल फिस्कल सिचुएशन अच्छा है, तो उस तरह से उसके चलते हमने अच्छे से संभाल के रखा
जी।
The central government has rejected the claims of mandatory transaction of money in Aadhaar banking at least once in a month, branding the claims as fake. The PIB fact check unit has denied that new updates by the Reserve Bank of India has made it mandatory for people to transact money through Aadhaar every month. It added that failure to do so will not lock the customer's Aadhaar transaction facility as claimed. And another news item, Directorate General of Civil Aviation has asked airlines to ensure that children up to the age of 12 years are allocated seats with their parents and guardians who are travelling on the same PNR. According to DGCA's statement, various instances have come to the notice where children below 12 years were not seated along with their parent or guardian. And now let's take a look at oil. Brent crude oil prices slipped today amid easing geopolitical tensions in West Asia. The Brent crude oil futures was lower at $86.48, whereas Western Texas Intermediate was down at $81.36 when reports last came in.
तो प्रकाश जी ऑयल के बारे में आपके क्या विचार होंगे?
ऑयल का तो बिल्कुल डायरेक्ट संबंध पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल उससे ही है ना
जी,
और वहीं पे टेंशन है, वहीं से ज्यादा ऑयल मिलता है। देखिए ना कितना क्रूशियल एरिया है
जी,
ज्यादा ऑयल की सप्लाई वहीं से, ज्यादा ऑयल का बाकी चीजों का मूवमेंट इधर से
जी,
और सारा और फिर ऑयल का इम्पैक्ट जो स्पाइरल है बड़ा, और आरबीआई जैसे आप लोगों ने पहले अपने आरबीआई का हवाला देते हुए बोला कि उनके एक आर्टिकल में है, आरबीआई ने भी ये कंसर्न जाहिर किए है कि भाई फ्यूल एंड फूड में ये एक रिस्क हो सकता है
जी,
और इसका तो पूरा रिपल इफेक्ट होता है, तो अभी हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को कैलिब्रेट करने में सावधानी बरतने की जरूरत है
जी। और अब गोल्ड पर नजर डालते हैं तो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव में कमी के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना मांग में कमी होने से गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 729 रूपये यानी कि 1.02% की गिरावट के साथ 70,468 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी समाचार तैयार किए जाने तक 719 रूपये यानी कि 0.89% नीचे आकर 79,860 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना दिन के कारोबार के दौरान 1.25% की सुस्ती के साथ $2,317 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं अंतरदिवसीय कारोबार में चांदी 1.13% नीचे आकर $27.21 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। प्रकाश जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
That was some relief for those who want to buy gold. Well, friends, before we wind up, as a reminder, the headlines. Stock markets climb for third day on firm global cues. Sensex rises 90 points. Nifty closes above 22,350. RBI bulletin forecasts extension of upward trend in real GDP growth fueled by robust investment demand and positive investments. And gold plunges 729 rupees to 70,468 rupees. Silver prices dive by 719 rupees. In futures market. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and Nikhil Kumar bidding adieu. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.